ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਹੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਮੇਂ ਉਜਾਲਾ ਫੈਲਾਤੀ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੋਂ ਕੋ ਮਿਟਾਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਜਬ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਪਰ ਆਕ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਕਾ ਸਿੰਹਾਸਨ ਛੀਨ ਲਿਆ ਥਾ, ਤਬ ਦੇਵਗਣ ਭੀ ਤ੍ਰਾਹੀ ਤ੍ਰਾਹੀ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਔਰ ਮਹਾਦੇਵ ਕੀ ਸ਼ਰਣ ਮੇਂ ਗਏ ਥੇ। ਸਭੀ ਦੇਵਤਾਓਂ ਕੇ ਸੰਕਟ ਕੋ ਮਿਟਾਨੇ ਉਨ ਤ੍ਰਿਦੇਵੋਂ ਨੇ ਤੁਮਹਾਰਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਥਾ। ਮਾਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਨ ਸਭੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੋਂ ਸੇ ਪ੍ਰਗਟੀ ਹੋਈ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਕੇ ਸਮੂਹ ਮੇਂ ਸੇ ਹੇ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ, ਤੁਮਨੇ ਅਦਭੁਤ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਆ ਥਾ। ਤੇਜਸਵੀ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਵਾਲੀ, ਅਸ਼ਟ ਭੁਜਾਓਂ ਮੇਂ ਆਯੁਧ ਧਾਰਣ ਕਰ ਸ਼ੇਰ ਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ, ਤੁਮਨੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਕਸ਼ਸੋਂ ਕਾ ਵਧ ਕੀਆ ਥਾ। ਤਬ ਤੀਨੋ ਲੋਕ ਤੁਮਹਾਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੇ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ ਥੇ।
ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ
ਵਾਲੀਏ,
ਸ਼ੇਰ ਪੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ
ਵਾਲੀਏ,
ਸੋਏ ਹੋਏ ਭਾਗ ਜਗਾ ਜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਸ਼ੇਰ ਪੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ,
ਸ਼ੇਰ ਪੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਸ਼ੇਰ ਪੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ,
ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋਤਾ ਵਾਲੀਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮਾਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਜੋਤ ਮਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਯੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਗਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਯੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਨਕਾ ਨ ਕੋਈ ਉਨਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਂ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਧੇਰੋਂ ਮੇਂ ਦਿਖਾ ਜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ,
ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਧੇਰੋਂ ਮੇਂ ਦਿਖਾ ਜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ,
ਸ਼ੇਰ ਪੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ,
ਸ਼ੇਰ ਪੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ,
ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮਾਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀਏ। ਰੱਖੀਓ ਮਲਾਜ ਇਨ ਅੱਖੀਓ ਕੇ ਤਾਰੋ ਕੀ, ਰੱਖੀਓ ਮਲਾਜ ਇਨ ਅੱਖੀਓ ਕੇ ਤਾਰੋ ਕੀ, ਡੂਬਨੇ ਨਾ ਪਾਏ ਨਈਆ ਹਮ ਬੇਸਹਾਰੋ ਕੀ, ਨਈਆ ਕੋ ਕਿਨਾਰੇ ਪੇ ਲਗਾ ਜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਸ਼ੇਰ ਪੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ,
ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ,
ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮਾਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮਾਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀਏ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਸੇ ਧਾਨੂ ਜੀ ਨੇ ਜਬ ਥਾ ਬੁਲਾਇਆ ਮਾਂ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਸੇ ਧਾਨੂ ਜੀ ਨੇ ਜਬ ਥਾ ਬੁਲਾਇਆ ਮਾਂ, ਕਟਾ ਹੁਆ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੂਨੇ ਘੋਲੇ ਕਾ ਲਗਾਇਆ ਮਾਂ,
बचा जा शेरा वाली,
कोई
शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली,
शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली,
शेरा वाली माँ जोता वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली,
शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली,
कोई शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली,
शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली।
माँ शेरावाली के भक्तों की हर बात निराली होती है। माँ के भक्त की बातों की गहराइयों में छिपे हुए ज्ञान के मोतियों को माँ का सच्चा भक्त ही परख सकता है। माता वैष्णो का परम भक्त एक किसान था, कड़ी मेहनत करता था और मस्त रहता था। एक दिन मदनपुरा का राजा घोड़े पे सवार हो उस ओर से निकला। पसीने से तरबतर किसान को देखकर बोला, भाई इतनी मेहनत करके कितना कमा लेते हो? किसान ने कहा, हे राजन, मुझे जितना चाहिए उतना मां शेरावाली की कृपा से मिल जाता है। मजदूरी करके जो भी मिलता है उसके चार हिस्से कर देता हूं। राजा ने पूछा, वो क्यों भला? एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पिछला कर्ज चुकाने के लिए, एक हिस्सा आगे के खर्च के लिए और एक हिस्सा पानी में फेंकने के लिए। राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारी बातें रहस्यपूर्ण हैं। समझाते हुए किसान ने कहा, एक हिस्सा मेरा और मेरे बीवी बच्चों का, ये हुआ खाने का। एक हिस्सा मेरे बूढ़े मां बाप का खर्च, ये हुआ पुराना कर्ज। एक हिस्सा मेरे बाद वाली पीढ़ी के लिए, ये हुआ आगे का खर्च। एक हिस्सा दान में देना, ये हुआ पानी में फेंकना। राजा को किसान की बात जच गई, लेकिन उसने कहा, यह रहस्य कभी किसी को ना बताना। जब तक कि तुम राजा का मुंह 1000 बार न देख लो। किसान ने राजा की बात मान ली। अगले ही दिन राजा ने अपने दरबार के विद्वानों को बुलाया और उन 4 बातों का रहस्य समझाने के लिए कहा। सभी विद्वान चकरा गए। 1,00,000 सिर धुनने पर भी उन्हें बातों का रहस्य समझ में नहीं आया। आखिरकार उन्होंने एक दरबारी से इस बात का पता लगाया कि राजा कल किसके पास गए थे, और वे लोग उस किसान के पास पहुंचे और उससे रहस्य बतलाने की विनती की। किसान पहले तो टालमटोल करने लगा, लेकिन जब वे लोग बाज नहीं आए तो कहा, रहस्य तब बतलाया जाएगा जब 1,000 सोने की मोहरें उसे दे दी जाएं। दरबारी विद्वानों ने राजा के कोप से बचने के लिए सोने की मोहरें किसान को लाकर दे दी। उसने सारा रहस्य बतला दिया। अगले दिन जब दरबारियों ने राजा को हूबहू किसान वाला रहस्य सुना दिया तो राजा को विश्वास हो गया कि ये बातें किसान ने ही वचन भंग करके दरबारियों को बतला दी हैं। उसने किसान को बंदी बनवा के दरबार में बुलवाया। तुमने 1,000 बार हमारा मुंह देखे बिना रहस्य दूसरों को क्यों बतलाया? तुम्हें प्राण दंड मिलेगा। किसान ने कहा, महाराज, इन्होंने आपके चेहरे वाली 1,000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी। मैंने एक एक करके आपका चेहरा 1,000 बार देखा, तभी रहस्य बतलाया। मैंने वचन भंग कहां किया महाराज? ये सुनकर राजा किसान पर प्रसन्न हुआ और उसे और भी इनाम दिया। ये उस किसान की बुद्धि का नहीं, जगत जननी माता की दया का चमत्कार था। मां की कृपा से उस किसान ने मौत को भी हरा दिया।
देर लगाया करो,
दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो, दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो।
माँ जग जननी इन बच्चों की आई तुम्हें क्यों याद नहीं,
आई तुम्हें क्यों याद नहीं,
हम है बड़े कमजोर, हम है बड़े कमजोर, हमारा सब्र न यूं आजमाया करो,
दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो,
दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। बना दो बात माँ,
बिगड़ी बना दो बात माँ,
अष्टभुजी माँ बच्चों के सर कोई तो रख दो हाथ माँ,
कोई तो रख दो हाथ माँ,
जीते हैं जो तेरे सहारे, तो जीते हैं जो तेरे सहारे, उनको ना तड़ पाया करो,
दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो,
दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। पुकारे जाएंगे,
हम तो पुकारे जाएंगे,
तू ही सुनेगी तुझे कहेंगे, झोली यहीं फैलाएंगे,
झोली यहीं फैलाएंगे,
छोड़ेंगे ना चरण तुम्हारे, हो छोड़ेंगे ना चरण तुम्हारे, चाहे हमें ठुकराया करो, देर लगाया करो,
दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो,
दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो,
दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो, दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो।
माँ जोता वाली बड़ी दयालु है, वो अपनी संतानों को गुमराह होने से बचाती है, भूले भटके संसारी जीवों को सही रास्ता दिखाती है। सुहागपुर गांव का एक साहूकार था कीमतीलाल। अनाज और खेत गिरवी रखना, सूद पर उधार पैसा देना और गरीब अनपढ़ किसानों को लूट लेना, यही था उसका काम। इस तरह بے شمار دولت جمع کر لی تھی اس نے۔ ایک دن کروڑوں کے مالک قیمتی لال کی انتراتما سے ایک آواز اٹھی، سیٹھ قیمتی لال، غریبوں کے خون پسینے اور آنسوؤں میں بھیگی دولت تو تم نے خوب کما لی، لیکن یہ سب تو یہاں کے سکھ کے لیے کیا، سورگ میں سکھی رہنے کے لیے کیا پربند کیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ارے اتنا سب کچھ ہے تو پنیہ کما، بھگوان کا وشال مندر بنوا۔ قیمتی لال نے آتما کی آواز سن کر ترنت ہی ایک اتی بھویہ مندر کے نرمان کا سنکلپ کیا۔ دوسرے ہی دن اس نے پیسے کی بند جھولیوں کے منہ کھول دیے۔ مندر کا نرمان شروع ہوا، ہزاروں مزدور رات دن جٹ گئے اس کاری میں۔ تبھی ایک دن پھٹے حال ایک سادھو وہاں سے نکلا۔ سادھو قیمتی لال کے پاس آ کر بولا، سیٹھ جی، سنا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوں کہ آپ سورگ میں ٹھاٹ باٹ سے رہنے کا انتظام ابھی سے کر رہے ہو۔ قیمتی لال ابھیمان سے بولا، صحیح سنا ہے تم نے، میں یہ مندر اسی لیے بنوا رہا ہوں۔ کہو کیا آگیا ہے؟ سادھو بولا، میں ٹھہرا غریب سادھو، میرے پاس کیول یہ سوئی ہے، چھوٹی سی سوئی، اس کی سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے گرو نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا ہر انسان کو مرتے وقت اپنا سروسو یہیں چھوڑ جانا پڑتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے جا پاتا، لیکن آج آپ کو دیکھا تو پتا چلا کہ آپ سورگ میں اسی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ پہنچو گے۔ اگر کشٹ نہ ہو تو ایک چھوٹا سا کام کرو گے؟ قیمتی لال بولا، ارے بابا جلدی کہو، آپ کا کام ہو جائے گا۔ سادھو نے کہا، یہ سوئی بھی اپنے ساتھ لیتے جانا، میں جب سورگ واسی ہو جاؤں گا تب وہاں آ کر تم سے لے لوں گا، وہاں کے چمکیلے قیمتی وستر پھٹیں گے تو یہ سوئی سینے کے کام آئے گی۔ سادھو کی اتنی سی بات سنتے ہی قیمتی لال کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ اس مہاتما کے چرنوں میں گر کر بولا، مہاراج آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، مرنے کے بعد جب اپنا یہ شریر تک ساتھ نہیں آتا تو بھلا اور وستویں کیا ساتھ آئیں گی؟ میں نے بہت سارے پاپ کیے ہیں، ان پاپوں کا پرائشچت مجھے سوئم یہی دیوی ماں کی آرادھنا، بھکتی اور سیوا سے کرنا ہوگا، ورنہ مجھے نرک میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ سادھو کے روپ میں ماتا ویشنو دیوی کا وہ سیوک قیمتی لال کو صحیح راہ دکھا کر اپنی راہ چلتا بنا۔ اس کے ہونٹوں پر ماں کی بھکتی کا ہی گیت تھا۔
اپنا کام ہے چرنوں میں تیرے، ماں دینا عرضی، خیر دینا یا نہ دینا میا یہ تمہاری مرضی۔
اپنا کام ہے چرنوں میں تیرے، ماں دینا عرضی، خیر دینا یا نہ دینا میا یہ تمہاری مرضی۔
آتے جاتے رہیں گے، دکھی دکھڑے مسیحا کو سناتے رہیں گے، کوئی تجھ سے بھوانی مجائے داد مانگے گا، کوئی
कोई पल रख लगे माँ औलाद मांगेगा, जैसी जिसकी तमन्ना होगी देगा अर्जी।
खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी, अपना काम है चरणों में तेरे माँ देना अर्जी।
खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। तेरे द्वार से कई ऊंची शान चाहेंगे, दान करने को महादानी दान चाहेंगे, कुछ तुझसे मवर सीधा सादा मांगेंगे, कुछ अपनी औकात से भी ज्यादा मांगेंगे, जैसे जिसकी तलब होगी देगा अर्जी।
खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी, अपना काम है चरणों में तेरे माँ देना अर्जी।
खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। किसे क्या कब देना ये तो तू ही जाने है, तेरी शक्ति को दुनिया सारी ही माने है, भक्ति भाव से जिसने तेरा नाम लिया है, तूने गिरते हुए को आकर थाम लिया है, समझ होगी जैसे भी जिसकी देगा अर्जी।
खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी, अपना काम है चरणों में तेरे माँ देना अर्जी।
खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी।
मैया पहाड़ा वाली की लीला ही न्यारी है, वो अपने भक्तों पर दया अवश्य करती है परंतु कठोर परीक्षा लेने के बाद। गरीब दास बहुत ही गरीब था, दूसरों की सुख संपत्ति देखकर उसका मन भी ललचाया करता था। वो चाहता था कि उसके झोपड़े की जगह जवाहरात से जड़ा सोने का महल हो, ऐसा महल जिसे देख बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट भी तरस जाएं। धन वैभव प्राप्ति के लिए गरीब दास ने सब देवी देवताओं से मन्नतें मांगी लेकिन बात न बनी। तब एक साधु के कहने पर गरीब दास ने माता भगवती को अपने हृदय मंदिर में बिठाया। उसी का दिन रात सुमिरन करते हुए वो आगे बढ़ा। कई दिनों तक चलते रहने के बाद वो पहुंचा एक सुनसान बियाबान जंगल में, जहां उसे एक बुढ़िया मिली। वो बोली, बेटे क्या खोजने के लिए इस तरह भटक रहा है? गरीब दास ने अपने मन की इच्छा उस बुढ़िया को बताई तो वो बुढ़िया बोली, अरे पगले, तू जिस खजाने की खोज में भटक रहा है वो तो वहां सामने वाली पहाड़ की नीचे वाली गुफा में छिपा है। जा, वहां जाकर जितने रतन उठा सके उठा ले। गरीब दास की खुशी का पार न रहा। बुढ़िया ने जो जगह बतलाई थी वो उसने ढूंढ निकाली। चट्टान हटाकर वो गुफा में दाखिल हुआ। वहां बिखरे पड़े अमूल्य हीरे जवाहरात की चकाचौंध से गरीब दास की आंखें चुंधिया गई। उसे अफसोस इस बात का था कि साथ में वो इतनी झोलियां नहीं लाया था, फिर भी उसने हीरे जवाहरात बटोरने शुरू किए। तभी ऊपर गड़गड़ाहट सुनकर वो घबराया। चट्टान ऐन गुफा के मुंह के पास लुढ़कती हुई आई और गुफा का द्वार बंद हो गया। हवा रुक जाने से गरीब दास का दम घुटने लगा। वो छटपटाते हुए सोचने लगा, अगर दम घुटने से मेरे प्राण निकल गए और मैं मर गया तो ये हीरे जवाहरात मेरे किस काम आएंगे। मैं गरीब ही ठीक था, कम से कम खुली हवा में सांस तो ले पाता था। गरीब दास घबराया, छटपटाया, थरथराया। तब उसे साधु की बात का स्मरण आया। उसने वहीं मां शेरावाली का नाम पुकारा। हे शक्तिदायिनी, मेरा वालिये मुझे बचा ले, मेरे प्राण बख्श दे, मुझे धनवान नहीं बनना। उसकी सच्ची पुकार मैया ने सुन ली। चट्टान हटी, गुफा का दरवाजा खुला और हवा के झोंके के साथ ही गरीब दास के सामने वही बुढ़िया मां शेरावाली के रूप में आ खड़ी हुई। मां मुस्कुरा रही थी, आशीर्वाद दे रही थी। गरीब दास दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा।
सुनो बिनती माँ मेरी,
सुनो सुनो बिनती माँ मेरी,
मुझको तू ठुकराना ना, भटके को भटकाना ना।
सुनो सुनो बिनती माँ मेरी,
सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। आंसू रोता है मन मेरा,
रोता है मन मेरा, रोता है मन मेरा।
सारी दुनिया छोड़ के मैंने द्वार है ढूंढा तेरा,
द्वार है ढूंढा तेरा।
माँ लाखों तूने तार दिए, बच्चों पे सुखवार दिए।
मुझको भी बिसराना ना,
सुनो सुनो बिनती माँ मेरी,
सुनो सुनो बिनती माँ मेरी।
कर्म और धीरज मन का तुझसे है सब लेना,
तुझसे है सब लेना, तुझसे है सब लेना।
खाली झोली तरस रही है, टाल न मुझको देना,
टाल मुझको देना।
हो दुख सुख तेरे हाथों में, कर दे उजाला रातों में। सुनो सुनो बिनती माँ मेरी,
सुनो सुनो बिनती माँ मेरी।
खजानों में जग जननी तीन लोक की माया,
तीन लोक की माया, तीन लोक की माया।
सृष्टि के हर जीव ने तुझसे जो मांगा सो पाया,
जो मांगा सो पाया।
हो मैं भी खड़ा हूँ दर तेरे, दुख संताप तुहर मेरे,
और मुझे परसाना ना, भटके तो भटकाना ना।
माँ सुनो सुनो बिनती माँ मेरी,
सुनो सुनो बिनती माँ मेरी,
मुझको तू ठुकराना ना, भटके को भटकाना ना। सुनो सुनो बिनती माँ मेरी,
सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी।
माँ शेरावाली ने हम सभी को सबसे कीमती ये मानव जन्म और मनुष्य का शरीर दिया है, फिर भी हमारी आंखों के आगे अज्ञान का जो पर्दा है उस कारण हम असली धन को देख नहीं पाते। एक नौजवान गरीबी से तंग आकर अपने भाग्य को कोसने लगा। गरीबी दूर हो इस उपाय की खोज में वो एक संत से मिला। महात्मा ने उसकी पूरी बात सुनी और बोले, बेटे मैं एक व्यापारी को पहचानता हूं, वो मनुष्य के अंग खरीदकर अच्छे पैसे देता है, तुम अपनी दोनों आंखें बेच दो उसे, वो 50,000 रुपए देगा। युवक बोला, हाँ आप कैसी बात करते हैं महाराज, 50,000 रुपए लेकर मैं क्या करूंगा, बिन आंखों के अंधा नहीं हो जाऊंगा। तब संत ने कहा, तो ठीक है दोनों हाथ बेच दो, 30,000 रुपए मिल जाएंगे। युवक बोला, अरे दो हाथ बेचकर 30,000 रुपए मिल भी गए तो किस काम आएंगे, मुझे अपाहज नहीं बनना। अच्छा तो ऐसा करो अपनी दोनों टांगे उसे बेच दो, 20,000 रुपए मिल जाएंगे। चलो दो ना सही, एक टांग ही बेच दो, 10,000 रुपए क्या बुरे हैं। नौजवान बोला, वाह महाराज वाह, क्या रास्ता बताया है धन कमाने का, मैं लंगड़ा नहीं हो जाऊंगा। संत बोले, फिर ठीक है पूरा शरीर 1,00,000 में बेच दो। नौजवान बोला, 1,00,000 तो क्या, अगर कोई 1,00,00,000 भी देगा तो भी मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगा। संत बोले, बेटे मैं यही समझाना चाहता हूं तुम्हें, भगवान ने जब करोड़ों नहीं अरबों खरबों की कीमत का ये शरीर दिया है तो भला तुम गरीब क्यों मानते हो अपने आप को। नौजवान संत के चरणों में गिरकर बोला, महात्मन आपने मेरी आंखें खोल दी, आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। संत बोले, वत्स मानव शरीर एक अपार खजाना है, अपने हर अंग से काम लो, इस शरीर के रोम रोम में शक्ति रूपिणी जगदम्बे का आह्वान कर, मां शेरावाली तेरे मन मंदिर में आन बसेगी, तब सोना चांदी हीरे जवाहरात तो क्या, जो तू चाहेगा वही पाएगा। जा मां की भक्ति में लीन हो जा, कण कण में मां के दर्शन कर।
बसी हो कण कण अंदर माँ, तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में,
तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में,
हम मूढ़ प्रति हम अनजाने, हम मूढ़मति हम अनजाने, माँ सार तुम्हारा क्या जाने। समंदर माँ तू पर्वत तू ही समंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। हो हम कुछ भी नहीं, फल फूल तुम्ही हो सरवर माँ, फल फूल तुम्ही हो सरवर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में।
कण कण में बसी मैया के रूप को न देख पाने वाले दुर्भागी और अभिमानी मनुष्य दयाहीन होकर अनजाने में पापों की गठरियां बांध लेते हैं। एक रानी थी, नाम था रूपमती। एक दिन वन विहार करते करते वो एक नदी के तट पर जा पहुंची। सहेलियों के साथ उसका जी चाहा कि स्नान किया जाए, पर जैसे ही उसने नदी के पानी में पांव रखा उसके शरीर में कपकपी आ गई। पानी बहुत ही ठंडा था। जैसे तैसे उसने डुबकी लगाई और बाहर आ गई। बाहर जोरों की हवा चल रही थी, पूरा शरीर थरथराने लगा। रानी ने दासियों से कहा, लकड़ियों का प्रबंध करो ताकि उन्हें जलाकर बदन को गर्माया जा सके। जब लकड़ियों का प्रबंध ना हो पाया तो रानी ने नदिया के पास ही बनी एक गरीब की झोपड़ी में आग लगा देने की आज्ञा दी। वैसा ही किया गया, लेकिन देखते ही देखते आग आसपास की झुग्गियों में फैल गई। कोलाहल मच गया, एक साथ कई गरीब बेघर हो गए। रानी का काम तो हो गया, पर गरीबों की बस्ती खाक हो गई। राजा न्यायप्रिय था। प्रजाजनों की फरियाद सुनकर उसने हुक्म दिया रानी को महल से घसीट कर बाहर लाओ, उसे गंदे फटे कपड़े पहनाकर दरबार में हाजिर करो। वैसा ही किया गया। राजा ने कहा, अरे निष्ठुर, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। तू अपने सुख के लिए दूसरों की व्यथा न समझ पाई। मैं तुझे इसकी कड़ी सजा देता हूं। आज से भीख मांग मांग कर जब तक तू इन बेघरों के लिए रहने के झोंपड़ों का इंतजाम नहीं कर देती, तब तक तुझे इस महल में नहीं आने दूंगा। देवी मां अपने भक्त जनों पर कभी आंच नहीं आने देती, क्योंकि मां का न्याय सदा ही दुखियों को दुखों से बचाता रहता है।
शीतलमा
शिरावाली माला टावाली,
सबके संकट हरती हो।
शेरावाली माँ रानावाली
हो, फिर ये तेरा बंदा निर्बाए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों।
एक दिन एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ राजा वीर सिंह के नगर में आए। राजा ने विनय पूर्वक उन्हें भोजन का आमंत्रण दिया, लेकिन महात्मा ने यह कहकर उसकी बात को ठुकरा दिया कि वे किसी की भीख स्वीकार नहीं करते। महात्मा बोले, राजन, अगर तू हमारी तीन बातें 300,000 में खरीद ले तो अवश्य हम तेरा भोजन ग्रहण करेंगे। राजा तैयार हो गया। महात्मा बोले, पहली बात है कि तू सुबह सुबह सूर्योदय से 2 घड़ी पहले ब्राह्म मुहूर्त में उठना। दूसरी बात है अतिथि का आदर सत्कार जी जान से करना। तीसरी बात है क्रोध आने पर शांति रखना। राजा ने दूसरे ही दिन से महात्मा की पहली बात का पालन शुरू कर दिया। सूर्योदय से पहले उठकर एक दिन जब वो जमुना नदी के किनारे टहल रहा था, तब उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो, रो क्यों रही हो? उस औरत ने कहा, मैं होनी हूं, रो इसलिए रही हूं कि इस देश का राजा 2 ही दिन के बाद मारा जाएगा। उसे सामने वाले पर्वत से निकलकर एक नाग डसेगा। राजा के मरते ही प्रजाजनों में हाहाकार मचेगा और पड़ोसी देश का राजा उसके राज्य पर धावा बोल देगा, उसके राज्य को नष्ट कर देगा। राजा सोचने लगा, महात्मा की पहली बात का पालन करने से ये लाभ हुआ कि मुझे अपने ही मरने की खबर 2 दिन पहले मिल गई। राजा के कहने पर मंत्रियों ने राजकुमारी को राजा के रूप में राज्याभिषेक करके राज सिंहासन पर बैठने की तैयारियां शुरू कर दी। राजा ने मंत्रियों को अपनी मौत की खबर दे दी और कहा, मेरी पुत्री के पश्चात उसका पति राज्य संभालेगा। राजा ने स्वयं अपने प्राण लेने वाले अतिथि नाग देवता के स्वागत की तैयारी की। पर्वत से लेकर नगर तक के रास्ते पर नाग देवता के लिए वंदनवार सजाए गए, मार्ग पर फूल बिछाए गए, इत्र छिड़का गया, जगह जगह दूध भरे कटोरे रखे गए ताकि नाग देवता तृप्त हो सके। नियत समय पर नाग देवता पर्वत से निकले, अपने स्वागत में की गई तैयारियों को देखकर भाव विभोर उठे। राजा के पास पहुंचकर नाग देवता बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे स्वागत सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हूं, मांगो, क्या चाहते हो? राजा ने कहा, हे नाग देवता, मैंने अपना धर्म निभाया है, आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। नाग देवता बोले, तुम्हारे जैसे धर्मनिष्ठ राजा को डसना पाप है, तुम्हारी मौत मैं अपने पर लेता हूं। इतना कहकर नाग देवता वहीं निर्जीव होकर ढेर हो गए। राजा ने सोचा, महात्मा की दूसरी बात मानने से मुझे नवजीवन मिला है। प्रजाजनों और दरबारी सभासदों की जय जयकार के बीच राजा महल में पहुंचा। अपनी रानी को एक पराये पुरुष से गले मिलते हुए देखकर उसे क्रोध आया, उसका हाथ तलवार की ओर बढ़ा। तभी उसे महात्मा की तीसरी बात याद आई। महात्मा ने कहा था, क्रोध आने पर शांति रखना। और जैसे ही राजा क्रोध पर काबू पाकर आगे बढ़ा तो देखा, उसकी राजकुमारी पुरुष वेश में अपनी मां के गले लग रही थी। राज्याभिषेक से पहले राजकुमारी ने राजा की आज्ञा के अनुसार पुरुष वेश धारण किया था। महात्मा की तीनों बातों ने ये तीन चमत्कार कर दिखाए। जब मां की कृपा होती है तो वो अपने भक्तों की झोलियां वरदानों से इसी प्रकार भर देती है।
भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे,
भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे।
माँ अपने भक्तों का कल्याण कर दे,
माँ अपने भक्तों का कल्याण कर दे।
भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे,
भर दे भर दे भर दे माँ।
ओ सारे जक्की वाली,
ओ सारे जक्की वाली,
ओ ऊंचे मंदिरों वाली,
ओ ऊंचे मंदिरों वाली,
द्वार तुम्हारे आकर मैया, द्वार तुम्हारे आकर मैया, कहता है हर एक सवाली। भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे,
भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे।
चल के
हम भी बड़े दूर से चल के,
बिनती हमारी करो मंजूर मैया,
बिनती हमारी करो मंजूर मैया।
दाती है नाम तेरा दे दो मुरादे, तेरे खजाने तो है भरपूर मैया,
तेरे खजाने तो है।
ओ सूहे चोले वाली,
ओ सूहे चोले वाली,
ओ अम्बे दुर्गा काली,
ओ अम्बे दुर्गा काली,
शरण तुम्हारी लाखों आए, शरण तुम्हारी लाखों आए, पर कहना सबका है ए। भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे,
भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे।
सागर से दो बूंद हम भी जो ले ले,
सागर से दो बूंद हम भी जो ले ले,
सागर का अम्बे मैया कुछ ना घटेगा,
सागर का अम्बे मैया कुछ ना घटेगा।
दया की तू जो मैया ज्योति जगा दे, जीवन से अंधियारा दूर हटेगा,
जीवन से अंधियारा दूर हटेगा।
ओ सच्ची ज्योता वाली,
ओ सच्ची ज्योता वाली,
ओ दुनिया की रखवाली,
ओ दुनिया की रखवाली,
चरण कमल पे झुके अनेकों, चरण कमल पे झुके अनेकों, पर इच्छा सबकी है एक। भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे,
भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे।
को तार
है क्यों ये मैया दामन हमारा,
खाली है क्यों ये मैया दामन हमारा।
मैया के वैया बन तारो ये नैया, होगा ये एहसान हम पे तुम्हारा, मैया शेरा वाले,
मैया शेरा वाले,
हो दाती मेहरा वाले,
दाती मेहरा वाले,
हाथ पसारे भक्त खड़े हैं, हाथ पसारे भक्त खड़े हैं, पर आशा सबकी है एक, भर दे भर दे भर दे माँ झोलिया भर दे,
भर दे भर दे भर दे माँ झोलिया भर दे,
माँ अपने भक्तों का कल्याण कर दे,
माँ अपने भक्तों का कल्याण कर दे,
हाँ भर दे भर दे भर दे माँ झोलिया भर दे,
भर दे भर दे भर दे माँ झोलिया भर दे।
मां संसार मार्ग में आने वाले दुखों के कांटे दूर करके अपने भक्तों की झोली में सुख शांति के फूल भर देती है। फूलों की कोमलता, फूलों के रंग, फूलों की महक कुदरत के करिश्मों का सुंदर खजाना है। राजा महेंद्र फूलों से बहुत प्यार करता था। फूलों के लगाव ने उसे सुंदरता का पुजारी बना दिया था। वो प्रजा पालन के कर्तव्य से ज्यादा भोग विलास में डूबा रहता था। एक दिन संध्या होने के समय राजा की सेज सजाने का काम चमेली नाम की मालन को सौंपा गया। सेज इतनी सुंदर, महकदार और कोमल सजी थी कि चमेली का मन हुआ कि एक पल वो भी उस पर लेटकर आनंद लूट ले। वो एक दो पल के लिए ही लेटी थी कि उसकी आंख लग गई। वो गहरी नींद सो गई। राजा जब वहां पहुंचा तो चमेली को सेज पर लेटे हुए देखकर क्रोध से तिल मिला उठा। उसने आओ देखा न ताओ चमेली की चोटी पकड़ी और जोर से खींचकर उसे फर्श पर गिराकर दहाड़ा, अरे बेशर्म, तेरी ये मजाल कि तू हमारी सेज पर लेट गई। लेकिन चमेली तो रोने चीखने चिल्लाने की बजाय ताली बजा बजा कर हंसने लगी, खिलखिलाने लगी, नाचने लगी। राजा का क्रोध और भड़क उठा। उसने सिपाहियों को बुलवाकर मालन को कोड़े लगवाए। कोड़े पड़ते रहे और हर कोड़े के साथ चमेली की हंसी और भी ज्यादा गूंजने लगी, मानो वो उस महल और पूरे खानदान का मजाक उड़ा रही हो। राजा से जब सहन न हुआ तो उसने सिपाहियों को रुक जाने का आदेश दिया। सिपाहियों को रुकते देखकर चमेली फिर हंसी और बोली, बस थक गए? तब राजा ने चमेली से पूछा, अरे पगली, तुझे इतने कोड़ों की मार पड़ी फिर भी तू हंसती रही, तुझे दर्द नहीं होता? मालन ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, बोली, अन्नदाता, मैं तो घड़ी भर के लिए अपना कर्तव्य भूलकर फूलों की सेज पर लेटी तो इतने कोड़े खाने पड़े। हंसी तो इस बात की आ रही है कि जो राजा यानी आप मां जगदम्बे की भक्ति और प्रजा पालन के कर्तव्य को भूलकर रात दिन भोग विलास में खोया रहता है उसे भला कितनी बड़ी सजा मिलेगी। और इतना कहकर फिर चमेली हंसने लगी। राजा का सर शर्म से झुका जा रहा था, चेहरा मुरझाने लगा था। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। वो मन ही मन मां से प्रार्थना करने लगा।
तेरा सहारा अम्बे मां, मुझे तेरा सहारा,
तेरा सहारा अम्बे मां, मुझे तेरा सहारा।
ना ओ पुरानी गहरा पा
तेरा सहारा, तेरा सहारा अम्बे माँ मुझे तेरा सहारा।
मेरी झोली भर दो,
मेरी झोली भर दो, मेरी झोली भर दो,
मुझे बहाकर लेना जाए तेज समय की धारा।
तेरा सहारा अम्बे माँ मुझे तेरा सहारा, मुझे तेरा सहारा।
चढ़ के
माँ शेर पे चढ़ के, माँ शेर पे चढ़ के,
हो भव सागर से पार करो मेरा हाथ पकड़ के,
मेरा हाथ पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के,
तेरे चलनी सीना,
मेरा चलनी सीना, मेरा चलनी सीना,
हो हुआ क्यों तेरे भक्तों का माँ मुश्किल जीना,
माँ मुश्किल जीना, माँ मुश्किल जीना,
अपनी जो
आ जा हरिद्वार जाके।
दुर्गा की अपार कृपा से गुलशन कुमार पेश करते हैं श्री दुर्गा वंदना।
भूतेषु विष्णु मायेति शक्तिता यारे वी,
अपने हर स्वर में भावनात्मक ताजगी समेट कर ला रही हैं तुलसी शिवानी।
नमस्तस्ये नमो नमः।
श्री दुर्गा वंदना कैसेट्स और सीरीज केवल टी सीरीज पर उपलब्ध। गुलशन कुमार की महान धार्मिक प्रस्तुति, माता की भेंटों का एकमात्र संग्रह जयकारा।
बारिशों की छमछम में तेरे दर पे आए हैं, मेहरा वाली मेहरा कर दे।
ऊंच-ऊंच मंदिरों में ये तेरी ज्योत जगे।
जयकारा कैसेट सीडी वीसीडी और डीवीडी केवल टी सीरीज पर उपलब्ध। गुलशन कुमार की महान धार्मिक प्रस्तुति ममता का मंदिर।
भक्तों पे छाया है सुरूर शेरावाली।
दिल ने पुकारा
तू माता की भेंटों का संकलन।
मन लेके आया माता रानी के भवन।
ममता का मंदिर कैसेट्स सीडी वीसीडी और डीवीडी केवल टी सीरीज पर उपलब्ध।
गुलशन कुमार प्रस्तुत हनुमान तेरा क्या कहना।
सुर सम्राट लखबीर सिंह लखा के स्वर में।
हे हनुमान तेरा क्या कहना।
प्रेजेंटिंग द लेटेस्ट इन टीवी टेक्नोलॉजी ओनली फ्रॉम टी सीरीज। अनमैच्ड क्वालिटी अनबीटेबल प्राइस।
A range of blank audio cassettes from T-Series, rugged, dynamic, and pure quality. T-Series, India's largest selling video systems with MP3, built-in amplifier, and with video games with full function remote. Widest range of video systems from 3995 to 9995 rupees. Free gifts up to 3,500 rupees. And with 6 months D-Series warranty.